ये आकाशवाणी है। सामयिकी में प्रस्तुत है रिसैट 2B उपग्रह के सफल प्रक्षेपण पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं विज्ञान विशेषज्ञ पल्लव बागला और विमान बसु।
आज सुबह इसरो ने रिसैट 2B अंतरिक्ष यान का प्रमोशन किया। ये खास किस्म का उपग्रह है जिससे कि हम दिन रात में या कहीं अगर बादल हो उसके होते हुए भी हम जमीन का तस्वीर बना सकते हैं। पल्लव, ये बताइए कि पहले भी हमने 2 रिसैट छोड़े हैं, ये तीसरा रिसैट है, तो इन तीनों में अंतर क्या है?
देखिए, आज जो रिसैट 2B का सफल प्रक्षेपण हुआ श्रीहरिकोटा से, वो एक बड़ा ही सटीक सैटेलाइट है, बहुत यूनिक सैटेलाइट है। वो एक्स बैंड रडार से युक्त है और उसकी जो देखने की क्षमता है वो डे एंड नाइट व्यूइंग कर सकता है। जब बादल आएंगे तो वो अंधा नहीं होगा, आपने भी बताया उसके बारे में। और उसका रेजोल्यूशन इतना हाई है कि वो 555-557 किलोमीटर की पर्च से आराम से दुश्मन पे पैनी नजर रख सकता है। कि ये जो सैटेलाइट है रिसैट 2B, ये स्ट्रेटेजिक पर्पस के लिए है। इसके मकसद और भी हो सकते हैं, लेकिन खासकर इसका यूज जो है वो भारत के वेस्टर्न बॉर्डर और ईस्टर्न बॉर्डर पे, जहां पे कि ज्यादा हमारे दुश्मन परेशान करते हैं, वहां पे नजर रखने के लिए है। और खासकर जब हम खास तरह के ऑपरेशन करते हैं, जैसे बालाकोट में एयर स्ट्राइक हुए थे, उस पर अगर नजर रखनी है तो ये रडार सैट के जो सैटेलाइट होते हैं ये बहुत काम आते हैं। रडार सैट खास किस्म के सैटेलाइट होते हैं, ये अपनी तरंगे ऊपर से धरती पे भेजते हैं और फिर जब वो वापस रिफ्लेक्ट होके आती हैं धरती से, उसकी इमेज लेते हैं। अगर क्लाउड्स हो, अंधेरा हो, तब भी ये देख सकते हैं, तो इसकी नजर से दुश्मन का छुपना बड़ा मुश्किल होता है।
दूसरे जो रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स होते हैं वो प्रकाश से काम करता है, तो अगर बादल छा जाए या रात हो तो काम नहीं कर सकता, पर रिसेट कर सकती है क्योंकि ये माइक्रोवेव के माध्यम से काम करती है। दूसरे रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट जो है वो सूरज की जो रोशनी होती है या दिन में जो हमें रोशनी दिखाई पड़ती है उससे जो है उसका इमेज बनाती है, लेकिन ये जो है ये अपनी तरफ से माइक्रोवेव बीम्स छोड़ती है जो कि धरती से रिफ्लेक्ट होकर फिर उसका जांच करते हैं, तो उससे जो है पता लग जाता है सतह में क्या है।
बिल्कुल, इस तरह की टेक्नोलॉजी बहुत देशों के पास नहीं है। चुनिंदा देश हैं जिनके पास अपनी काबिलियत है अपना रडार सेट बनाने की, और वो भी इस रेजोल्यूशन का एक्स बैंड का रडार बनाने की। 2 रडार सेट हमारे पास थे, एक रडार सेट को हमने 2012 में प्रक्षेपित किया था, वो 2017 में वो कुछ कारणों से खराब हो गया, कुछ इम्प्लोजन हुआ था अंतरिक्ष में उसके ऊपर जिससे कि वो खराब हो गया। और एक हमने इजरायल से 300 किलोग्राम का छोटा सा बच्चा अक्वायर किया था रिसैट, वो अंतरिक्ष में काम कर रहा है। उसकी क्लैरिटी नहीं है कि वो कितने साल उसको काम करना था, कितना कर रहा है नहीं कर रहा है, क्योंकि उसकी इमेजेस ये सब स्ट्रेटेजिक पर्पस के लिए हैं, आर्म फोर्सेस के यूज के लिए हैं, आम जनता के पास इसकी इमेज की बहुत कम जरूरत होती है। लेकिन ये रडार सैट जो है अगर जरूरत पड़े तो एग्रीकल्चर फोरकास्टिंग में, फॉरेस्ट्री के मापदंड करने में और डिजास्टर मैनेजमेंट में, ये तीनों में यूज किए जाते हैं। जब भी आपके पास बादल छाए हों और उसके थ्रू देखने की जरूरत हो, मान लीजिए साइक्लोन आया है और आपको असेस करना है डैमेज क्या हुआ, या जैसे केदारनाथ में बारिश हुई थी बहुत ज्यादा, तब आपको असेस करना है क्या डैमेज है, तो वहां पे रडार सैट बहुत काम आते हैं।
क्योंकि हमारे यहाँ जो खरीफ क्रॉप होती है वो मई से सितंबर तक होता है जब बरसात होती है, और बरसात के टाइम में लगातार जो है बादल छाया रहता है, तो उस समय अगर हमें क्रॉप्स की जांच करना पड़े तो रिसैट के माध्यम से हम कर सकते हैं, क्योंकि ये जो है बादल के थ्रू देख सकता है।
बिल्कुल, क्रॉप मॉनिटरिंग में बहुत काम आता है रडार सेट। हम अभी तक इमेजेस जो थे वो कैनेडियन रडार सेट से एक्वायर कर रहे थे ऑन अ फ्रेंडली बेसिस, शेयर करके हम एक्वायर कर रहे थे, लेकिन अब ये रिसैट 2B जब अंतरिक्ष में काम करने लगेगा, अभी तो केवल प्रक्षेपित हुआ है और सही कक्षा में पहुंच गया है, आने वाले टाइम में कुछ हफ्तों में जब इसको ऑपरेशनल डिक्लेयर कर देगा इसरो, उसके बाद जब ये यूज करना जाएगा तो इसका आर्म फोर्सेस के भी काम आएगा और सिविलियन यूज में भी काम आएगा, लेकिन लार्जली इसका काम जो है वो भारत की सुरक्षा के लिए है।
ये PSLV C-46 से छोड़ा गया, और ये जो है PSLV का 48वां मिशन था, इसमें से सिर्फ 2 असफल हुए हैं।
पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल भारत का एक बड़ा उमदा किस्म का रॉकेट है। उससे हम लो अर्थ के मिशन कर सकते हैं, उससे जियोसिंक्रोनस GTO में सैटेलाइट डाल सकते हैं, और उससे हमने इंटरप्लैनेटरी मिशन भी कर दिए। चंद्रयान 1 किया, फिर मंगलयान भेजा, वो भी पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल से किया।
कल्पना जो है वो इससे छोड़ा गया था, जो कि जियोस्टेशनरी ऑर्बिट में
मीटियोलॉजी का सैटेलाइट है, उसको भी हमने छोड़ा उससे। तो ये जो सारे मिशन हैं ये बहुत वर्सटाइल रॉकेट है, इसमें 4 स्टेज होते हैं, उसके कारण इसरो के इंजीनियर्स को बड़ी डायवर्स मिशन करने की ताकत देता है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, तभी दुनिया को इस रॉकेट से बहुत प्यार है। आज से मिलाकर के भारत ने अभी तक 354 सैटेलाइट अंतरिक्ष में भेजे हैं और आज इसरो के चेयरमैन ने बताया कि आज के मिशन को मिलाकर भारत ने आज तक अंतरिक्ष में 50 टन माल ढोया है। ऐसा नहीं है कि अंतरिक्ष में भेजा है तो यह केवल सुरक्षा की दृष्टि से होगा। कार्टोसैट मैपिंग में काम आते हैं, नेविगेशन वाले सैटेलाइट जो हैं और काम आते हैं। जब साइक्लोन फानी आया था उड़ीसा में हाल में, उसी तरह का साइक्लोन जब 1999 में आया था 10,000 लोगों की मौत हुई थी। अब जब साइक्लोन आया है तब डबल डिजिट में है मौत, तो वो क्यों है? क्यों? इसीलिए क्योंकि हमारे पास अपने सैटेलाइट हैं, हम ढंग से मॉनिटर कर पाते हैं ये साइक्लोन का पाथ। जब साइक्लोन का पाथ मॉनिटर करते हैं तो उससे हम बहुत लोगों की जान बचा सकते हैं। देखिए, माल का नुकसान बचाना बड़ा अलग काम है, लेकिन जान बचा देना बहुत बड़ा काम है। और आप 70 के दशक में जाइए, 3 लाख लोग मरे थे एक ही साइक्लोन में, उससे आके अब डबल डिजिट में आ गए। उसकी केवल सारा श्रेय जो है वो सैटेलाइट को जाता है। ऑब्वियसली उसके संग डाउनस्ट्रीम में जो उड़ीसा गवर्नमेंट के कर्मचारियों ने काम किया और जो उड़ीसा के लोगों ने काम किया कि उन्होंने जो वार्निंग दी उससे वो अपनी जगह से हटके सेफ एरिया में गए। लेकिन जब अंतरिक्ष की कड़ी नहीं काम करे तो ये नीचे की कड़ी सब बेकार हो जाती है।
अगला इसरो का कार्यक्रम है चंद्रयान 2, बहुत बड़ा काम है क्योंकि पहली बार किसी दूसरे कॉस्मिक ऑब्जेक्ट पे एक लैंडर उतारा जाएगा और एक रोवर चलाया जाएगा। ऐसा कहा जा रहा है कि जुलाई में इसको छोड़ा जाएगा। अभी तक इतना डिले कैसे हो गया, क्योंकि ये तो 1.5 साल पहले छोड़ा जाना चाहिए था।
देखिए, चंद्रयान 2 जो है अभी तक भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी के लिए सबसे कॉम्प्लेक्स मिशन है। उसमें एक ऑर्बिटर है, उसमें एक विक्रम नाम का लैंडर है जो विक्रम साराभाई के नाम पर रखा गया है, और एक रोवर है जिसका नाम इसरो ने प्रज्ञान दिया है। और ये भारत जो है और किसी देश ने जो कभी नहीं किया, साउथ पोल पे लैंड करने की कोशिश कर रहा है। इसमें जरूर थोड़ी सी देरी हुई है क्योंकि शुरुआत में ये साझा रूप से भारत और रूस का मिशन होना था जिसमें रूस को इसका लैंडर बनाना था, लेकिन जब वहां पे कोई फेलियर हुआ उसके बाद भारत ने कहा नहीं, हम लैंडर अपना अपने आप बनाएंगे। तो जो विक्रम लैंडर बनने में टाइम लगा है, फिर रॉकेट हमारा एक के बाद एक जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल Mk2 के बैक टू बैक फेलियर हुए थे 2010 में, उससे एक सेटबैक हुआ। तो अब वो मिशन जो है वो अपने चरम सीमा पे है और 9 और 16 जुलाई के बीच में उसका लॉन्च विंडो है जिसमें जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल Mk3 या जिसको मैं अक्सर बाहुबली कहता हूं, उस रॉकेट से उसको श्रीहरिकोटा से प्रक्षेपित किया जाएगा और फिर वो चांद पे सितंबर में पहुंचेगा। ये सॉफ्ट लैंडिंग जो है चांद के साउथ पोल पे सितंबर में होगी। बड़ा अहम मिशन है इसरो के लिए, मुश्किल मिशन है लेकिन।
और इससे आगे जो है गगनयान की बात है,
गगनयान अपने में एक बड़ी यूनिक केपेबिलिटी है क्योंकि केवल 3 देश हैं, अमेरिका, रूस और चाइना, जिसके पास इंडिपेंडेंटली अंतरिक्ष में ह्यूमंस को भेजने की या मनुष्य को भेजने की अपनी क्षमता है। तो ये भारत चौथा देश बनेगा जब 2022 में गगनयान पे भारतीय जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल Mk3 पे बैठ के अंतरिक्ष में जाएगा। पहले लो अर्थ ऑर्बिट में जाएगा और उसके बाद देखिए आगे कहां कहां तक के मिशन जाते हैं।
अंतरिक्ष यात्री के जो ट्रेनिंग की बात है वो कहाँ हो रहा है?
अंतरिक्ष यात्री का पहले सिलेक्शन होना है, ट्रेनिंग होनी है। भारत में एक इंस्टीट्यूट ऑफ एरोस्पेस मेडिसिन है भारतीय एयरफोर्स का बंगलुरु में, वहां पे उनका सिलेक्शन होगा और वहां पे ट्रेनिंग होगा। अभी तो उसमें इसरो को बहुत पड़ाव पार करने हैं और ये जो आज का सफल प्रक्षेपण हुआ है Resat-2B का, ये बड़ा खास मिशन है और ये भारत को महफूज रखने में, खासकर इसके जो सीरीज में 2-3 सैटेलाइट और हैं इस फ्लीट में, जब वो पूरी तरह से अंतरिक्ष में आ जाएंगे तो मैं साफ तौर पे कह सकता हूं कि जो बालाकोट में जिस तरह की चीज हुई थी कि हमें डैमेज असेसमेंट का अपॉर्चुनिटी नहीं मिला था, वो हो पाएगा।
धन्यवाद पल्लव।
सामयिकी में अभी आप सुन रहे थे Resat-2B उपग्रह के सफल प्रक्षेपण पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे विज्ञान विशेषज्ञ पल्लव बागला और विमान बसु। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं, पता है airnsttalks@gmail.com। ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in।